पृष्ठ संख्या 144, धूमिल। भाषा की रात में मनुष्य। भाषा की रात मेरी कल्पना की उपज नहीं, यह धूमिल की एक कविता है। सच बात तो यह है कि भाषा की रात धूमिल की भी रचना नहीं है, यह विचित्र रचना है उनकी, जिन चंद चालाक लोगों ने, ब्रैकेट में, जिनकी नरभक्षी जीव ने पसीने का स्वाद चख लिया है, ब्रैकेट बंद, बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया है। धूमिल तो इस भाषा की रात में छिपी सच्चाई और वास्तविकता को अंधेरे से निकाल कर उजाले में ला देते हैं। क्या यही कविता है? जो भी हो, हम इस रात में जीते हैं लेकिन इसे जानते नहीं। हम में से कुछ इसे जानते हैं लेकिन ठीक से पहचानते नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो जानते भी हैं और पहचानते भी हैं लेकिन कहना नहीं चाहते। कुछ ऐसे हैं जो कह नहीं सकते। धूमिल इसे जानते हैं, पहचानते हैं और बेहिचक साफ साफ कहते हैं। यह भाषा की रात नंगी और ठंडी और काली, तीन मुंह वाली यह भाषा की रात है। धूमिल की कविता के बारे में यह आम धारणा बन गई है या बना दी गई है कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता मुहावरेबाजी है। वह चुस्त दुरुस्त चुभती हुई चमत्कारी नई भाषा की कविता है। यह ठीक है कि धूमिल ने हिंदी कविता की भाषा पृष्ठ संख्या 145 को नई कविता की स्मृति जीवी, भावुक, दोमुही साहित्यिकता और उन अकवितावादी अराजकता के दलदल से निकालकर जनजीवन की वास्तविकता की जमीन पर खड़ा किया और उसे अपने समय की सच्चाइयों का सामना करने के लायक बनाया। लेकिन धूमिल केवल भाषा के रूप की चिंता के कवि नहीं हैं। उनकी दृष्टि भाषा की रात के अंधेरे में दूसरों का शिकार करने वालों पर है और शिकार होने वालों पर भी। उनकी चिंता के केंद्र में मनुष्य है। भाषा की रात के अंधेरे को आलोक से अधिक बढ़ाने वाला मनुष्य भी और भाषा की नंगी, ठंडी और काली रात में बेबस शिकार बना मनुष्य भी। धूमिल ने भाषा की रात की भयानक वास्तविकता का साक्षात्कार भाषा में ही किया है। इससे जाहिर है कि भाषा की रात का अंधेरा ही एकमात्र वास्तविकता नहीं है। इस अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाली भाषा का प्रकाश भी एक वास्तविकता है। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि भाषा के कई रूप और रंग होते हैं? भाषा की रात रचने वाले एक तरह के प्रयोजन से भाषा का प्रयोग करते हैं और उस रात के खिलाफ खड़े होने वाले दूसरी तरह के प्रयोजन से। पहली स्थिति में भाषा मनुष्य के खिलाफ खड़ी की जाती है, दूसरी स्थिति में वह मनुष्य की रक्षा में खड़ी होती है। एक स्थिति में अगर भाषा उस तिकर्मी दरिंदे का कौर है जो सड़क पर और है, संसद में और है, तो दूसरी स्थिति में भाषा आदमी होने की तमीज, सीखने सिखाने का माध्यम है। धूमिल भाषा के छद्म को पहचानते हैं, उस छद्म के मानव विरोधी प्रयोजन को भी जानते हैं, लेकिन वह भाषा की मानवीय अर्थवत्ता से भी परिचित हैं। तभी वह भाषा के दोनों रूपों से मनुष्य के रिश्तों को व्यक्त करते हैं। भाषा की रात में अंधेरे में वस्तुओं के रूप और शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। सच बात तो यह है कि वह खुद नहीं बदलते बल्कि बदल दिए जाते हैं। आप आजकल अपने समाज में प्रचलित कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए और देखिए कि उनके अर्थ कैसे बदल गए हैं। आप लोकतंत्र को लीजिए। इस देश की जनता लंबे समय से लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही है। संघर्ष पहले विदेशी शासकों से था, अब देशी शासकों से है। अब एक नई स्थिति सामने आई है। आसाम की जनता केंद्रीय सरकार के लोकतंत्र से त्रस्त है। क्या दिल्ली की सरकार और आसाम की जनता के लिए लोकतंत्र का अर्थ एक ही है? भाषा की रात के अंधेरे में जनतंत्र का अर्थ वनतंत्र हो जाता है। भारत के संविधान लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ अब समाजवाद, पृष्ठ संख्या 146, भी आ गया है। इस तरह भारत अब एक समाजवादी देश है। क्या इस देश की जनता यह सुनकर चौंकी नहीं होगी कि वह एक समाजवादी देश की जनता हो गई है? लेकिन जनता के चौंकने से क्या होता है? संसद में जनता के प्रतिनिधि ने जनता की बिना जानकारी के इस देश को समाजवादी बना दिया, चाहे जनता जाने या ना जाने, माने ना माने। वैसे दुनिया में आजकल अनेक तरह के समाज और समाजवादी देश हैं। सैनिक समाजवाद की तरह या संवैधानिक समाजवाद भी एक नए तरह का समाजवाद है। आप देखिए कि समाजवाद का अर्थ क्या से क्या हो गया है। भारत के संविधान में जो समाजवाद आया है उसका क्या अर्थ है, कोई अर्थ है भी या नहीं? क्या समाजवाद का जो अर्थ सरकार समझती है वही जनता भी समझती है? जब से यहाँ संविधान में समाजवाद आया है तब से जनता का शोषण और दमन और बढ़ गया है। ऐसा समाजवाद भाषा की रात में ही संभव है। आजकल प्रायः अखबारों में पुलिस से मुठभेड़ में समाज विरोधी तत्वों के मारे जाने की खबरें छपती हैं। सामान्य प्रयोग में मुठभेड़, समाज विरोधी तत्व और मारे जाने का जो अर्थ होता है वही अर्थ सरकारी भाषा में नहीं होता। सरकारी भाषा में जो भी सरकार विरोधी है, शोषक वर्ग का विरोधी है, वह समाज विरोधी है। मुठभेड़ के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपने घर में, सड़क पर, जंगल में या जेल में कहीं भी पकड़कर मारा जा सकता है, और मारे जाने का अर्थ है हत्या करना। शब्दों के अर्थ की यह दुर्गति देखकर सहज ही समझा जा सकता है कि यह भाषा का एक विशेष प्रयोजन से नया प्रयोग है। जब भाषा शोषण और दमन की राजनीति का साधन बनती है तो भाषिक संवेदनशीलता से मानवीय संवेदनशीलता गायब हो जाती है। भाषा की रात में वस्तुओं के गुणधर्म बदल जाते हैं, यहाँ तक कि तेजाब गंगा जल हो जाता है। तभी तो भागलपुर में पुलिस कैदियों की आंखों में गंगा जल डालती है और कैदी तड़प तड़प कर आंखें और प्राण गंवाते हैं। भाषा राजनीति से भी बनती बिगड़ती है और राजनीति के काम भी आती है। ऐसी स्थिति में राजनीति के रूप और उद्देश्य के अनुरूप भाषा का स्वरूप बन जाता है। झूठ और क्रूरता की राजनीति के दबाव के कारण शब्द मानवीय अर्थ खो देते हैं और भाषा मानवीय संवाद के काबिल नहीं रह पाती। नाजी राजनीति के अवसर से उस समय जर्मन भाषा इतनी भ्रष्ट हुई कि वह मानवीय रचनाशीलता का माध्यम बनने के लायक ना रही। नाजी काल की राजनीति और जर्मन भाषा के संबंध का अध्ययन करने वाले अनेक घटकों की यही राय है। उस समय आडोर्नो ने कहा था कि अस्चविज की घटना के बाद कविता असंभव हो गई है। कविता की संभावना का नाश नाजी व्यवस्था में दानवता के नंगे नाच के कारण ही नहीं हुआ, उस व्यवस्था के प्रभाव से जर्मन भाषा की मानवीय अर्थवत्ता के विनाश से भी हुआ। संभवतः यही पृष्ठ संख्या 147 कारण है कि उस काल में जर्मन भाषा के महत्वपूर्ण रचनाकार वही थे जो या तो जर्मनी से बाहर थे या नाजी राजनीति के विरुद्ध। जब भाषा की रात का अंधेरा बढ़ने लगता है तब भाषा में निहित मानवीयता का नाश होने लगता है। आजकल साहित्यिक बहसों में प्रतिबद्धता की चर्चा घटी है, शायद अब बहस की जरूरत ना रह गई हो, लेकिन इधर कुछ दिनों से सरकारी भाषा में प्रतिबद्धता की बहार आई हुई है। कभी प्रतिबद्ध न्यायपालिका की चर्चा गर्म थी, फिर प्रतिबद्ध नौकरशाही की बात चले, अब सरकारी जवान आकाशवाणी पर प्रतिबद्धता ऐसी चढ़ी हुई है कि रोज रोज खबरों में किसी न किसी बात के बारे में सरकार की प्रतिबद्धता की कस्में और वादे सुनते सुनते लोगों के कान पक गए हैं। पिछले दिनों सरकारी जवान से लगातार सुनाई पड़ रहा था कि सरकार आसाम में चुनाव कराने और लोकतंत्र लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आसाम में चुनाव हुआ, अब सरकारी प्रतिबद्धता का परिणाम सबके सामने है। शब्दों के अर्थ के ऐसे तपन से भाषा की रात का अंधेरा गहराता है। आजकल सरकारी जबान आदेश के साथ साथ उपदेश की भाषा भी बोल रही है। समाचार के ठीक पहले या बाद में सुनाई पड़ता है यूनाइटेड कामा, जिसे जो काम मिला है उसे वह निष्ठापूर्वक करे, यही सच्ची देश सेवा और राष्ट्र प्रेम है, यूनाइटेड कामा बन। यह सर्वोदयी उपदेश ऊपर से जितना सहज, सात्विक और निरामिष लगता है, भीतर से वैसा नहीं। वर्तमान समाज व्यवस्था में शोषकों और शोषण करने और श्रमिकों को केवल श्रम करने को मिला है। पूंजीपति और सामंत मजदूरों तथा किसानों का निष्ठापूर्वक शोषण करते हैं, फिर सच्चे देश सेवक और राष्ट्र प्रेमी बन जाते हैं। मजदूर और किसान देश सेवा और राष्ट्र प्रेम के नाम पर चलने वाले शोषण में हमेशा निष्ठा नहीं रख पाते। वह कभी-कभी हड़ताल और आंदोलन भी करते हैं। तब पुलिस शोषण व्यवस्था और सत्ता के प्रति पूरी निष्ठा दिखाती हुई मजदूरों, किसानों का क्रूरता से दमन करती है। किसानों और सामंतों के देश प्रेम में फर्क होता है। किसान इस फर्क को बताते हुए कभी-कभी सामंतों से कह उठता है, हम जिसे अपने खून से सींचते हैं और तुम जिसे लूटते हो, वह हम दोनों की माँ नहीं हो सकती। शासक वर्ग भाषा का छद्म बढ़ाता है। वह अपने उद्देश्य को छिपाने के लिए भाषा के छल का सहारा लेता है। भाषा के ऐसे छल छद्म को तोड़ना शासक वर्ग के प्रभुत्व के खिलाफ बड़ी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोर्चा है। पृष्ठ संख्या 148। आकाशवाणी से उपदेशों की जो वर्षा शुरू हुई है, वह थमने का नाम नहीं लेती है। वह लगातार जारी है, कभी रिमझिम और कभी मूसलाधार। जनता इस बारिश में भीग रही है। उपदेश अमृत की एक बूंद यह है, इन्वर्टेड कामा, उत्पादकता समृद्धि की कुंजी है, इन्वर्टेड कामा बंद। उत्पादकता समृद्धि की कुंजी तो है, लेकिन किसकी समृद्धि की? पिछले 30 वर्षों में राष्ट्रीय उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, उससे कौन समृद्ध हुआ है? क्या कभी आपने सोचा है कि इन 30 वर्षों में टाटा और बिरला जैसों की कुल पूंजी कितनी और किस ढंग से बढ़ी है? अगर आप यह जान ले तो यह भी जान लेंगे कि इस बीच की उत्पादकता से कौन समृद्ध हुआ है। फिर तो यह सूत्र समझ में आ जाएगा कि उत्पादकता किसी की समृद्ध की कुंजी है। उत्पादकता के आधार हैं मजदूर और किसान। पिछले 30 वर्षों में इनकी दशा दिनों दिन खराब हुई है। किसानों और मजदूरों की गरीबी पर ही टिकी है टाटा और बिड़ला जैसों की समृद्धि। जो सरकार उपदेश देती है कि उत्पादकता समृद्ध की कुंजी है, वही किसानों, मजदूरों को गरीबों में संतोष का नुस्खा भी बताती है। सरकार ने पहले गरीबी मिटाने का नारा दिया, लेकिन जब गरीबी नहीं मिटी तो वह गरीबों को मिटाने में लग गई। सरकार और उसकी बोली बोलने वाले ज्ञानियों ने गरीबी की एक रेखा खींच रखी है। जिस तर्क और बुद्धि से यह रेखा खींची गई है, उसी के सहारे गरीबी मिटाने का नाटक भी चलता रहता है। इस नाटक में कभी कुछ गरीबों को रेखा के ऊपर खींच लिया जाता है और कभी पहली रेखा को मिटाकर उसके नीचे एक नई रेखा खींच दी जाती है। ज्ञानी लोग इस बात पर बहस करते हुए पसीना पसीना हो जाते हैं कि रेखा सही जगह खींची गई है या कि गलत जगह। इस तरह रेखा गणित के सहारे गरीबी मिटाने का नाटक भाषा की रात में ही चल सकता है।